ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंध 26वां अध्याय राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना। श्लोक संख्या 7।
ये एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानव कर्मणातेन राजेन्द्र ज्ञानेन न चलिप्यते।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिषत से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य: जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाती है, उसी प्रकार वेदों में ऐसे आदेश हैं जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। सभी जीव इस संसार में अपने आप भोग के लिए आए हैं, फलतः इंद्रिय भोग को नियमित करने के लिए वेद हैं। जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करता है वह अपने कर्मों एवं उनके फलों में बंधता नहीं। भगवत गीता में आया है, यज्ञात कर्मणः, मनुष्य को यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अन्यथा कोई भी कर्म जीव के बंधन का कारण बनेगा। मनुष्य विशेष रूप से जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आता है, अतः उसे वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करना होता है जिससे वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर ले और साथ ही धीरे धीरे भव बंधन से भी मुक्त हो ले। ऐसे नियमों के अनुसार किया गया कर्म ज्ञान किया गया कर्म ज्ञान कहलाता है। निस्संदेह वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। ज्ञानेन न सलिप्यते बताता है कि वैदिक नियमों का पालन करने से मनुष्य कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक आदेशानुसार आचरण करने का उपदेश दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी राज्य के नियमों तथा लाइसेंसों के अनुसार कार्य करता है तो वह किसी अपराध में नहीं पकड़ा जाता, किंतु मानव निर्मित नियम सदैव दोषपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो त्रुटियां कर सकते हैं, मोहग्रस्त हो सकते हैं, ठगे जा सकते हैं और अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं, किंतु वैदिक आदेश इनसे भिन्न है क्योंकि उनमें ये चारों दोष नहीं पाए जाते। वैदिक आदेशों में त्रुटि नहीं हो सकती। वैदिक ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, अतः उसमें ठगी मोह त्रुटियां इंद्रियों की अपूर्णता का प्रश्न ही नहीं उठता। सारा वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि वह परंपरा द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी जो कि आदि कवि या ब्रह्मा कहलाता है, श्री कृष्ण द्वारा अंतःकरण में उपदेश दिया गया था। श्री कृष्ण से इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा ने इस ज्ञान को परंपरा विधि से नारद को प्रदान किया और नारद ने इसे व्यास को दिया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान परिपूर्ण है। यदि हम वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं तो पाप कर्मों में बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुवाद फिर से दोहराइएगा। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिष्यत से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। एवं कर्मनियतम विद्वान कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न सलिप्यते। नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वेदों का उद्देश्य हमें सकाम कर्मों से परे ले जाना है। सकाम कर्म क्या होता है? जब हम कोई कर्म किसी भौतिक फल की अपेक्षा से करते हैं तब वो सकाम कर्म कहलाता है। लेकिन गीता में हमें निष्काम कर्मयोग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है और निष्काम कर्मयोग के भी परे भक्ति योग का आदेश भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे अर्जुन, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो भी खाते हो, दान देते हो, सब कुछ मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करते हुए करना। तो इस शास्त्रों में जो भी हमें आदेश बताए जाते हैं इनका पालन करना मनुष्य जीवन में उचित है, अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही बनाया गया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया जाता है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नमस्वतेरितम न तरेत न भवाभ्यम तरेत स आत्महा। नव योगेंद्रो का उपदेश है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है उद्धव को। उद्धव गीता में आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य देह नृदेह आद्यम अर्थात हर प्रकार के अच्छे फल प्रदान करने वाला शरीर है और बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुलभम, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ऑटोमेटिक मिल जाता है ये शरीर। जैसे जैसे जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, खुद ब खुद जब सही समय आ जाता है तो ये मनुष्य देह प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी साथ साथ सुदुर्लभम, सुलभ होते हुए भी दुर्लभ भी है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पर ही मिलेगा, उसके पहले कितना भी प्राणी क्यों न प्रयास करे मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, उसे 80 लाख योनियों से प्रवेश से भ्रमण करने के बाद ही मिलेगा। कीड़े की योनि में जीव कितना भी सोचे मुझे मनुष्य जीवन चाहिए, नहीं मिलेगा, उसे क्रमशः ऊपर की ओर प्रगति करते हुए मनुष्य शरीर को प्राप्त करना होगा। इसलिए सुदुर्लभम, तो ये जो हृदय मनुष्य देह है ये एक प्लव या नौके के समान है। सुकल्पम, जो कि बहुत ही उपयुक्त है भगवत प्राप्ति के लिए, और इसमें जो कप्तान है, जो माझी है, नौका चलाने वाले, वो है गुरु। गुरु कर्णधारम, और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मया अनुकूलेन नमस्वत ईरितम, मेरे जो आदेश है मया अनुकूलेन, जो मेरी ओर ले आते हैं मनुष्य को, ये आदेश वैसे हैं नमस्वत ईरितम, जैसे कि पवन जो है वो अनुकूल दृष्टि में अनुकूल दिशा में वो नौके को धक्का दे रहा है। मतलब ये मनुष्य जीवन नौके के बराबर है, गुरु कर्णधार है और ये शास्त्र क्या है, वो ऐसा पवन जो कि सही दिशा में नौके को ले जाता है। न भवाब्धिम सतरेत स आत्मा, आपके अभ्यम मतलब ये सागर भव सागर, तो इस भवसागर को पार करने के लिए जो व्यक्ति इस मनुष्य देह का उपयोग नहीं करता है वो क्या है, आत्महा, अपने आत्मा की हत्या करने वाला है। भले आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है, आत्मा तो अमर है, हम सब पहले से ही सुनते आए हैं, जब से मंदिर में आए हम सुनते आए हैं कि आत्मा अमर है, तो आत्महा की बात कहां से आती है। आत्महा का मतलब है कि हमारे आध्यात्मिक संस्कृति को, हमारे आध्यात्मिक बीज को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करना। और ये आध्यात्मिक जीवन केवल मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है, इसलिए ये मनुष्य जीवन में शास्त्रों का पालन करना अनिवार्य है। जिस प्रकार से देश के नागरिकों को देश का कानून क्या है ये समझना चाहिए, जान लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, उसी तरह से मनुष्य जीवन में हमें शास्त्रों का आदेश जान लेना चाहिए और इनका पालन कर लेना चाहिए। अगर कोई नागरिक कोई कानून को तोड़ता है और जब गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो कहेगा कि मुझे कानून नहीं मालूम था, तो अदालत इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, कहेगी आप इस देश के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य था कि आप इस देश के कानून को जान लें, और आप न जानते हुए आपने कानून तोड़ा है, फिर भी आप गुनहगार हैं, आपको दंड मिलना ही है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आकर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये पाप है, मैंने अनजाने में ये पाप किया अज्ञान की अवस्था में, तो यमराज कहेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको मनुष्य देह मिला है तो आपको मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको जानना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधोनोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में गीता के बताते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, ये शास्त्र है ये प्रमाण है, किसके लिए, किस चीज को बताने के लिए, कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कार्य ये उचित कार्य क्या है और अकार्य अर्थात अनुचित कार्य क्या है, ये ज्ञान हमें देने के लिए शास्त्र प्रमाण है। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम, तो हमें शास्त्र के आदेशों को जानकर हमें उचित और अनुचित कार्यों में भेद करना चाहिए, और जो उचित कार्य है उनको ही करना चाहिए और अनुचित कार्यों को नहीं करना चाहिए। कर्म कर्तुम इहार्हसि, ये भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं। तो हमें किस आधार पर कर्म करना है ये शास्त्र हमें बताते हैं। कई बार लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, हम केवल अपने अपने कर्म करते रहेंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि गीता में नहीं की जाती, क्योंकि गीता में स्पष्ट हमें बताया जाता है कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, इनको शास्त्रों के आधार से हमें जानना चाहिए। लेकिन आजकल शास्त्रों में लोगों को विश्वास नहीं है, अज्ञश्चाश्रितधानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान श्री कृष्ण 4वें अध्याय में गीता से बताते हैं कि ऐसे लोग होते हैं अज्ञ जो अज्ञानी है, अश्रद्धान जिनकी श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा जो हमेशा संशय करते रहते हैं, विनश्यति उनका नाश होता है, और न अयम लोको अस्ति न परः न सुखम, उनको इस जीवन में भी नहीं और अगले जीवन में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आचार्य बताते हैं कि तीन प्रकार के लोग हुए जिनका वर्णन इस श्लोक में आता है। पहले तो है अज्ञान, जो पशुप्राय है, अज्ञानी है, जिनको कुछ नहीं मालूम भगवान क्या है, शास्त्र क्या, कभी शास्त्र नाम भी सुना नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम उनको। और दूसरे हैं अश्रद्धान। ये अश्रद्धान कौन होते हैं? जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है आध्यात्मिक जीवन का, लेकिन वो देखते हैं कि इतने सारे दल हैं, संस्थाएं हैं, मठ हैं, पंथ हैं, सब अपने अलग अलग बोल रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा स्वीकार करना है कौन सा नहीं करना है। जैसे कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि आप लोग कहते हो कृष्ण परम है, वो लोग कहते हैं शिवजी परम है, और वो पंथ कहते हैं ये ऐसा है और वो पंथ कहते हैं वैसा है, तो हम तो बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं, भ्रांति में पड़ जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इससे अच्छा यही है कि हम कुछ भी नहीं करें, क्योंकि पता नहीं चलता अल्लाह हर हर आदमी अलग बात बोल रहा है और सब बोलता है हमारे पास प्रमाण है, सब अपने अपने बात को सिद्ध करने के लिए प्रयास करता है, तो इनको अश्रद्धा ध्यान कहते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हो गए जो संशय आत्मा है। संशय आत्मा मतलब क्या है? थोड़ी बहुत श्रद्धा उसको है शास्त्र में, जानता है थोड़ा कुछ, श्रद्धा भी है लेकिन ज्यादा नहीं, श्रद्धा कोमल है, कमजोर है, लेकिन संशय किस बात की होती है उसके मन में? अरे ये शास्त्र में ऐसे ऐसे बताया जाता है, हरि नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, अरे क्या ये संभव है? हरि नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको संशय आत्मा कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका उदाहरण आता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, और एक बार जब हिरण्यमय मजुमदार ने, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और मामा थे, चाचा थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर को निमंत्रण दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हरिदास ठाकुर बड़े शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, तो उनसे कुछ सुनना चाहते थे, हरि कथा करवाना चाहते थे उनसे। तो उस प्रांत के, उस जगह के कई लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया। हरिदास ठाकुर ने कीर्तन किया और फिर हरिनाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे। करते करते उन्होंने ये कह दिया कि हरिनाम करने से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें आसानी से जीवन की सिद्धि मिल जाती है, भगवत प्रेम मिल जाता है। तो उस समय गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण वहां पर थे, और ये जो ब्राह्मण उस जमाने के कई ब्राह्मणों की तरह वैदिक ज्ञान तो उनके अंदर था, लेकिन वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार नहीं था और वैदिक ज्ञान का निचोड़ भी उनको नहीं मालूम था। तो तुरंत वो खड़े हो गए और बड़े कटु वचन बोलने लगे, निरादर किया उन्होंने हरिदास ठाकुर का, कहने लगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये कोई संभव है? आप कह रहे हैं कि केवल हरिनाम लेने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, जबकि वेदों में बताया जाता है कि हमें इतनी सारी तपस्या करनी पड़ती है, इतने विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, इतना शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर हमारे थोड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, और कितने सालों सालों तक ऐसी तपस्या करने के बाद में व्यक्ति पापों को नष्ट कर बैठता है, और कई जन्मों के बाद में जाकर व्यक्ति मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। और अब आप कहते हैं कि एक हरि नाम का उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति किसी के परे आकर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, ये कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात नहीं है। हरिदास ठाकुर ने उस समय हरि नाम की महिमा का वर्णन किया और कहा कि पाप नष्ट करना या मुक्ति प्राप्त करना भी ये हरिनाम का काम नहीं है। हरिनाम से हमें शुद्ध प्रेम मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के समय खुद ब खुद आसानी से पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल नामाभास से पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्ति के केवल आभास मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और जब शुद्ध नाम आ जाता है हृदय में, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। उस समय गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, अगर हर एक हरि नाम लेने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती तो मैं मेरा नाक काट लूंगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आपको आपका नाक काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हिरण्य और हिरण्य मजुमदार बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कह दिया गोपाल चक्रवर्ती से कि आप यहां से चले जाओ, और उनको नौकरी से भी हटा दिया। और थोड़े दिन बाद गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया, और उसका सुंदर चेहरा था अब बिल्कुल कुरूप हो गया, उसका नाक भी गिर गया, और उंगलियां जो भी सुंदर सुंदर अंकुर की तरह थी वो भी सब गिर पड़े, और फिर सभी लोग हरिदास ठाकुर के शक्ति के ऊपर चमत्कार, क्या ये चमत्कार कैसे हुआ, ये विस्मित हो गए। तो ये संशय आत्मा जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है, थोड़ी बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो शास्त्र में बताया जाता है कि शास्त्र में ये करने से क्या होगा, इसके बारे में विश्वास नहीं करते। हरिनाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, नहीं विश्वास करते, तो उनको संशय आत्मा कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अज्ञानी लोग जो होते हैं, अज्ञान भले वो मूर्ख क्यों न हो, लेकिन उनको थोड़ा बहुत भौतिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन ये जो संशय आत्मा लोग होते हैं, ना तो इधर के ना उधर के रह जाते हैं, उनको केवल तकलीफ ही तकलीफ होती है। जैसे गोपाल चक्रवर्ती ना इधर के रह पाए ना उधर के रह पाए। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, अज्ञान, अश्रद्धालु और संशय आत्मा। तीनों को क्या होता है, विनश्यति, उनका विनाश होता है। और इस लोक में भी और अगले लोक में भी उनको सिद्धि की या सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में 16वें अध्याय में बताते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न तो सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परामगतिम। वो कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र के विधियों को जो त्याग देता है, जो मानता नहीं है, और वर्तते कामकारतः, केवल अपने मनगढ़ंत ढंग से काम के प्रभाव में वो कार्य करता है, काम कारतः, तो क्या होता है, न तो सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती उसे, न सुखम, सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, न पराम गतिम, परम गति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि जब तक हम शास्त्रों के आदेश के अनुसार काम नहीं करेंगे, हम सुख प्राप्त नहीं करेंगे, सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, परम गति प्राप्त नहीं करेंगे। अर्थात मनुष्य जीवन को चाहिए कि शास्त्रों को वो जान लें और शास्त्रों का पालन करें। वास्तव में मनुष्य जीवन की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति शास्त्रों के आदेश का पालन करना शुरू कर देता है। जब तक व्यक्ति शास्त्रों को नकार देता है, तब तक वो पशुतुल्य है। इसलिए इनको द्विपद पशु बताए करते हैं। इसलिए जब तक कि मनुष्य जीवन में हम शास्त्रों के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक समाज में दुख ही दुख होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, विश्वास पूरी तरह से नहीं, पाठ भी करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए और बड़े अभिमान से बोलने लगे प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी, मैं सारे गीता का पाठ 48 मिनट में कर सकता हूं, सारे 700 श्लोक, और मुझे कंठस्थ है। तो प्रभुपाद जी ने सुना, तुरंत पहचान गए कि इस व्यक्ति के हृदय में घमंड है, तो कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप 48 मिनट में केवल सारा गीता का पाठ कर लेते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या आप 48 मिनट गीता को जी सकते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता को जीना मतलब गीता के आदेश के अनुसार जीना। और गीता का आदेश क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान ने आदेश दिया है मन मना, हमेशा मेरा स्मरण करो। तो क्या वो व्यक्ति एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे? भव मद भक्त, क्या वो व्यक्ति भगवान के भक्त थे? मद्याजी, क्या भगवान की उपासना करते थे? माम नमस्कुरु, भगवान के सामने आके क्या दंडवत डालते थे, नमस्कार करते थे? अगर नहीं करते थे, इसका मतलब है कि वो गीता का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। और जो गीता का आदेश का पालन नहीं करता, भले वो गीता के श्लोक को जाने, पाठ करना जाने, श्लोक भले कंठस्थ हो उसे, लेकिन इनका क्या मतलब? कोई मूल्य नहीं है। इसलिए केवल पाठ करना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका पालन भी करना है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि पाठ ही करना है तो तोता भी कर सकता है, पोपट उनके सारे श्लोकों का उच्चारण अच्छी तरह से कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र भी बढ़िया अच्छी तरह से बोल लेगा। हम लोग जब जाप करते हैं तो कभी कभी एक कृष्ण एक राम बीच बीच में खा जाते हैं, और कभी कभी इतने तिजोरी जोर से बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं कि पूरे महामंत्र का उच्चारण नहीं होता। लेकिन तोते को हम ऐसे अच्छे तरह से सिखा सकते हैं कि वो हर एक अक्षर का उच्चारण अच्छी तरह से करेगा, और वो भी पंडित की तरह बोलेगा, संस्कृत विद्वान की तरह भी बोल सकेगा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद बताया करते थे कि जब ये पोपट या तोते को आप हरे कृष्ण महामंत्र सिखाओगे और वो बोलना शुरू करेगा, अरे कृष्ण अरे कृष्ण 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 हरे, ऐसा बोलेगा अच्छी तरह से, अचानक उसका गला पकड़ लो तो क्या करेगा? का 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 तुरंत शुरू हो जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल यांत्रिक ढंग से गीता का पाठ करता है, शास्त्रों का उच्चारण करता है, शास्त्रों को भले भांति जानता भी है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, इनका सार नहीं जानता, तो क्या होगा? जब भगवान आके गला पकड़ेंगे, किस समय? मृत्यु के समय। और काल ने आकर जब गला पकड़ लेते हैं वो उस व्यक्ति का, तो व्यक्ति अपने जब तब शास्त्र को सब भूल जाएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा, मुझे बचाओ बचाओ, अपने पत्नी को बुलाएगा, पति को बुलाएंगे, बच्चों को, जैसे कि अजामिल के साथ हुआ। अजामिल ने अपने बच्चे को बुलाया, जब यमदूतों का दर्शन किया तो किनको बुलाया? भगवान को बुलाने के बजाय बच्चों को बुलाया, अपने छोटे बच्चे को। लेकिन अजामिल का सौभाग्य क्या था कि उसके बच्चे का नाम जिसके के जिसको उन्होंने पुकारा, उनका नाम नारायण था, इसलिए तार गए, उस कठिन परिस्थिति से परे हो गए, क्योंकि कम से कम नारायण का नाम तो पुकारा था। इसलिए अपने बच्चों को बंटी लवली हैप्पी नहीं नाम देना चाहिए, ऐसे भगवान के नाम ही देने चाहिए, ताकि मृत्यु के समय अगर हम उनको पुकारें तो कम से कम थोड़ा तो नाम आभास तो होगा, कम से कम शुद्ध नाम भले ना हो, लेकिन कम से कम यमदूत के चंगुल से तो फंस जाए कुछ, तो हम निकल जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी तरह से शास्त्रों का पालन करने का मतलब है ये भक्ति करना, ये हम समझ लें। और अगर अच्छी तरह से भक्ति हम करें बड़े अपने हृदय से, और इसमें कोई लापरवाही न करें, और अगर जाने अनजाने में थोड़े शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन हो भी जाए, फिर भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। गदाधर पंडित, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षद थे, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था और ये व्रत लिया था कि मैं तोता गोपीनाथ की सेवा करूंगा जगन्नाथपुरी में, और पुरी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने के संन्यास लिया था, वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, रवाना होते समय गदाधर पंडित ने कहा महाप्रभु से, मैं भी आपके साथ में आऊंगा, आपके विरह को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे गदाधर, तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, ये व्रत लिया है कि तुम जीवन भर जगन्नाथपुरी धाम को छोड़ोगे नहीं, तो अगर तुम मेरे साथ में आओगे तो तुम्हारे क्षेत्र संन्यास के व्रत का व्रत जो है वो भंग हो जाएगा, धर्मों के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो गदाधर पंडित ने कहा मेरा व्रत, मेरे धर्म का पालन सब नरक में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। जब धर्म के पिता का संग मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, जब उनके चरण कमलों का आश्रय मुझे मिल रहा है, तो ये मेरे व्रत तब जब इनकी क्या कीमत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में आऊं और जो भी पाप पाप लगे मुझे क्षेत्र संन्यास का व्रत तोड़ने के लिए, मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें सही उदाहरण पेश करना है समाज में, धर्मों के नियमों को त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए हमें भी हमारे जो हम व्रत लेते हैं उनको भी गंभीरता से पालन करना चाहिए। गदाधर पंडित के पद चिन्हों में चलकर चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार अगर हमें ऐसा लगे कि ठीक है हम तो भक्ति कर रहे हैं, एक आध बार चार नियम तोड़ दिए तो कौन सी उसमें नुकसान है, नहीं। लेकिन महाप्रभु ने कहा है बहुत कड़क नियमों का पालन हमें करना चाहिए, 16 माला अच्छी तरह से करना चाहिए, भक्तों का संग अच्छी तरह से करना चाहिए, और इस प्रकार से हम हमारे जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो वेद या शास्त्र हमारी माता है, भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता है, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में हमें रहना चाहिए और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। शास्त्रों का सार तो यही है कि हम भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, भक्तों के संग में आकर भजन कीर्तन करें, कृष्ण कथा सुने और करें, और अपना जीवन सुखी बनाएं, और मृत्यु के बाद में भगवान के धाम में चले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न मतभेद इत्यादि? प्रश्न ये है कि ये बताया जाता है कि शास्त्रों का पालन करने से, आदेशों का पालन करने से उन कार्यों का फल हमें स्वीकार नहीं करना पड़ता, अगर पाप हो जाता है तो उसका फल हमें स्वीकार नहीं करना पड़ता। तो अगर क्षत्रिय के लिए बताया गया है कि वो मांस खाए और मांस खाए तो क्या उसका फल उसे मिलेगा? वैसे क्षत्रिय को मांस खाने की का आदेश नहीं दिया जाता, आदेश नहीं है ये। कभी कभार शास्त्रों में ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत छूट दी जाती है जो पाप कर्म से इतने लगाव रखते हैं कि उनको छोड़ नहीं सकते। थोड़ा छूट देने का मतलब ये नहीं है कि ये आदेश है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि दो तीन दिन पहले भी चर्चा हो रही थी कि अगर शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा एक कार्य करे जो कि साधारणतः वर्जित है तो धीरे 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 से उसका उद्धार होगा, थोड़ी बहुत उसकी रक्षा होगी, क्योंकि कम से कम वो शास्त्रों के आदेश के अनुसार तो कर रहा है। लेकिन फिर भी आगे चल के धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा ये कार्य मेरे लिए करना उचित नहीं है, फिर वो त्याग देगा। लेकिन उन्हीं कार्यों को अगर वो मनगढ़ंत ढंग से करेगा तो फिर उसका परिणाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन छूटों का भी फायदा नहीं लेता, वो जानता है कि आखिर में अंततः हमें भगवान के शरण में जाना है, तो सीधे वो भगवान के शरण में ही जाता है। इसलिए वो ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग से बिल्कुल निरासक्त रहता है, दूर रहता है, सकाम कर्म के मार्ग में पड़ता ही नहीं है। और कोई प्रश्न? ठीक है।
वेद और शास्त्र में इतने नियम है, जैसे बताया जाता है कि सखाए नियम बनाते हैं, तो ये नियम हमें तो मालूम नहीं होते, कुछ ऊपर ऊपर के जो नियम मालूम होते, तो बाकी हम जो भी वेदों के या शास्त्रों के निर्माण पूरा हम जब कार्य नहीं करते, तो इसका जो फल है तो हमें वो बुरा नहीं पड़ेगा। और जब ये मालूम करने के लिए हम जाएंगे तो हमें पता भी मिलेगा कि कितने नियम है और कितने नियम से हम हमारा पूरा जीवन देखे, तो जो भी थोड़े मालूम होते उसकी तरफ से हम जाएंगे तो भी आदर्शों का उल्लंघन हो
जाए। इसमें तीन बातें हैं। पहली बात, आदेश का उल्लंघन हुआ उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, इसलिए वैष्णव जो होते हैं बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए वो सारे शास्त्रों का सार, उनका निचोड़ सारे मनुष्य समाज के लिए प्रस्तुत करते हैं। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, सद धर्म संस्थापकों, लोका नाम हितकारिणों। शरद गोस्वामियों के बारे में श्रीनिवास आचार्य बताते हैं, नाना शास्त्र विचारण एक, नाना अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का उन्होंने विचार किया, चिंतन मनन किया, अध्ययन किया, गहराई में जाकर पढ़ाई किया, और क्या किया, सद्धर्म संस्थापकों, और फिर इनका निचोड़ निकालकर सद्धर्म की स्थापना की। किस हेतु? लोकानाम हितकारिणों, प्रजा के कल्याण के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रजा सारे शास्त्रों को जान नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, श्रुतया विभिन्ना, इतने सारे शास्त्र हैं, कितने शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी तो कितनों को समझ पाएंगे। इसलिए ऐसे वैष्णव जैसे कि शरद गोस्वामी हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए, और फिर सारे शास्त्रों का निचोड़ सार आके हमें बताते हैं। जैसे शरद गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास की रचना की, जिसमें आजकल कलयुग में हमारे लिए जो भी विधि विधानों का पालन करना उचित है, संक्षिप्त रूप में सार उनका सब बता दिया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और श्री प्रभुपाद ने ये हरिभक्ति विलास का भी सार लिया है, और हमारे लिए आजकल के जमाने में कैसे किस प्रकार की विधियों का पालन करना है वो हमारे लिए प्रस्तुत किया है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो ये एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक प्रकार की सुरक्षा है। क्यों? भगवान ने कह ही दिया है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा है कि सारे धर्मों को त्याग कर अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो अगर हमने श्री कृष्ण का शरण लिया हुआ है और अनजाने में भी अगर पाप हो जाती है, जानबूझकर नहीं, लेकिन हमें कुछ शास्त्रों की विधि विधानों का ज्ञान नहीं है और ऐसे कुछ हो जाता है, फिर भी भगवान कहते हैं मैं सुरक्षा करता हूं, चिंता नहीं करो, मां शुचि। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है, और बाकी लोगों के लिए तो खतरा है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, इसलिए सबसे आसान तरीका है भगवान के शरण में जाना। इसलिए तो ये यज्ञ बताए जाते हैं, पंच यज्ञ, क्योंकि पांच प्रकार के पाप जो है हर एक व्यक्ति साधारण जीवन में भी करता है, घर में भी गृहिणी जो होते हैं वो भी पाप करते हैं, रोज घर में झाड़ू मारते हैं, कितने कीटाणु कीट मर जाते हैं, पानी को उबालते हैं या किसी पानी को एक कटोरी से या एक पात्र से दूसरे में डालते हैं, उसमें पाप हो जाते हैं। हम आग जलाते हैं किसी चीज को गर्म करने के लिए, उसमें कितने प्राणी मर जाते हैं। ऐसे साधारण दैनिक जीवन में भी कितने पाप होते हैं, इसलिए इनका प्रतिकार करने के लिए, इनका प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मकांड में यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं। लेकिन ये तो बड़ी समस्या है कि पाप तो भर भर के हो रहे हैं दिन भर, और उनका प्रतिकार करते करते हमारा सारा जीवन ही निकल जाता है। दो कदम आगे एक कदम, दो कदम पीछे, दो कदम आगे दो कदम पीछे, तो मतलब हम प्रगति नहीं करते, ये कर्मकांड। और खतरा रहता है कि दो कदम आगे जाके तीन कदम पीछे आए, ये भी खतरा रहता है। लेकिन भक्ति मार्ग सुरक्षित है, केवल श्री कृष्ण के शरण में जाने से सारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन हाँ, लापरवाही नहीं करनी है कि हम कृष्ण के शरण में आ गए, अभी हमें कोई चिंता नहीं करनी है पाप किया नहीं किया, नहीं। हमें बहुत आतुर रहना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जानते हुए हमारे हाथों से कोई पाप नहीं होना चाहिए। हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद ने इतनी किताबें लिखी हैं, हमको ध्यान से इनका अभ्यास करना चाहिए, पठन करना चाहिए, भागवत क्लास, गीता क्लास श्रवण करना चाहिए, जान लेना चाहिए कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। और हमारे पूरे पूरे प्रयास के बावजूद अगर हमारे हाथों से अनजाने में कोई पाप हो गया तो भगवान सुरक्षा का वचन देते हैं। लेकिन लापरवाही हमारी ओर से हो जाए और हम सोचे कि भगवान सुरक्षा करेंगे, ये हमारे लिए अच्छी भावना नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक ही है, एक ही बात, क्योंकि कर्म तो दो प्रकार के हो सकते हैं, पुण्य या पाप। कर्मों का फल नष्ट होना मतलब पुण्य और पाप दोनों का फल नष्ट होना। कहाँ सुना था? यहाँ मंदिर में हरि नाम लेने से हमारे पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी आखिर भौतिक ही तो है ना। पुण्य और पाप दोनों एक सिक्के के दो बाजू है, कोई अंतर नहीं वैसे खास दोनों में। एक से थोड़ा भौतिक सुख मिलता है, एक से भौतिक दुख मिलता है। अच्छा स्वप्न, बुरा स्वप्न, स्वप्न आखिर स्वप्न है, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। एक से ऊर्ध्वगति स्वर्ग, दूसरे से अधोगति नरक, लेकिन अंततः पुनः यहां आना पड़ता है। इसलिए पाप पुण्य दोनों हमारे नष्ट हो जाते हैं भक्ति मार्ग स्वीकार करने से। ठीक है, और कोई बात? बहुत जल्दी मन विचलित हो जाता है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? शास्त्रों का पालन करना चाहिए, फिर मन शांत हो जाएगा। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्ये न चित्रह्यते असंशयम तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं अर्जुन को कि हाँ अर्जुन, तुम जब बोल रहे हो कि मन को वश में करना वायु से भी कठिन है, ये बिल्कुल सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्ये न चित्रह्यते। अभ्यास और वैराग्य, शास्त्रों के जो विधि है, जो ये करना है, ये करो वो करो वो करो, इसको कहते हैं अभ्यास। और वैराग्य क्या है? ये मत करो वो मत करो वो मत करो, इसको वैराग्य कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य, अगर शास्त्रों की विधियों का पालन हम करेंगे तो खुद मन वश में आ जाएगा, और जब मन वश में आ जाएगा तो हम विचलित नहीं होंगे आसानी से। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। यम लब्धा, जब इसको प्राप्त करते हैं, किसको? भक्ति को। जब भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं, च अपरम लाभम मन्यते न अधिकं ततः, ये परम लाभ को जब प्राप्त कर लेते हैं तो इससे अधिक कोई लाभ है हम सोचते नहीं। हम जान लेते हैं कि यही सबसे बड़ी चीज है, इससे ऊंचा कोई और चीज नहीं है। मनते न अधिकम ततः, इससे अधिक लाभ कोई और वस्तु हमें नहीं दे सकती, ये सब कुछ है। यस्मिन स्थितो
न दुखे न गुरु नापी, गुरु मतलब भारी दुख, तो भारी दुख में भी, दुखद अवस्था में स्थित होने के बाद भी न विचार लेते, विचलित नहीं होता व्यक्ति जब उसे भक्ति को प्राप्त, वो भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आ जाता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। जैसे कि प्रहलाद, अम्बरीश महाराज विचलित नहीं हुए कठिन से कठिन भौतिक परिस्थिति में। तो हम भी अगर भक्ति के नियमों का पालन अच्छी तरह से करेंगे, हृदय से पालन करेंगे, तो भगवान कृष्ण की कृपा होगी, वो हमारे मन को वश में कर लेंगे। और जब मन वश में आ गया तो फिर और क्या, और किस बात की आवश्यकता है। जितात्मनः प्रशांतस्।